हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वही बड़ा सा अंधेरा बेसमेंट था, और पहले की तरह वहाँ सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, वो भी काफ़ी ऊंचाई पर। उस बल्ब की रोशनी में कोने में दीवार से लगा हुआ आधी बेहोशी की हालत में विराज पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। किसी की परछाई दरवाज़ों की तरफ से आती हुई उसकी ओर बढ़ी। उसकी परछाई उसके आधे चेहरे पर पड़ी, जिससे वो बहुत डर गया। चीखते हुए उसने कहा, नहीं नहीं, प्लीज़ रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। अब मेरे साथ कुछ भी मत करना, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूँगा। और विराज के कानों में एक जानी पहचानी औरत की आवाज़ पड़ी, ये सब क्या बोल रहे हो बेटा, मैं तो तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ, और ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा? आदित्य ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है? ऐसा बर्ताव तो जानवरों के साथ भी नहीं करते। वो आवाज़ सुनकर विराज ने अपनी आधी खुली आँखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की और उस तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसे चेहरा ठीक से नज़र नहीं आया। लेकिन उस औरत ने साड़ी पर एक ब्लैक कोट पहन रखा था और इसके अलावा बकेट हैट के साथ मास्क और सनग्लासेस भी लगाए हुए थे। लेकिन विराज को शायद उसका चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसने तुरंत कहा, मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चली जाइए यहाँ से, यहाँ बहुत ख़तरा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप। सामने खड़ी औरत तेज़ कदमों से विराज की ओर बढ़ती हुई बोली, मुझे बड़ी मुश्किल से इस जगह के बारे में पता चला है, और तुम मुझे वापस जाने को बोल रहे हो? मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर अपने साथ सैगल हाउस ले जाने के लिए। ताली बजाते हुए एक तेज़ आवाज़ वहाँ गूंजी। वाह, क्या बात है, कितना प्यार है माँ बेटे में, और मैं उससे भी ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो ये सब अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ। क्यों अरविंद, बढ़िया इमोशनल सीन है ना? विराज तो उस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन उसकी माँ शायद उस आवाज़ को सुनकर थोड़ी डर गई। फिर भी उसने पीछे मुड़कर हिम्मत बटोरी और एकदम रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में बोली, आदित्य बेटा, छोड़ दो विराज को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और अगर कुछ गलत किया भी है तो वो सबक सीख क्या होगा, देखो उसकी हालत, मर जाएगा ऐसे। आदित्य अपनी दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, मेरी सुनैना की हालत के बारे में सोचा था, उसे भी तो कुछ हो सकता था, और फिर मैं क्या करता, सोचा था इसने एक बार भी मेरी सुनैना के सिर पर वार करने से पहले। आदित्य की बात सुनकर उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, बेवकूफ़ कहीं का, वो वार सुनैना के लिए नहीं, तुम्हारे लिए था, वो तुम्हें बचाने के लिए बीच में आ गई, बेवकूफ़ लड़की। उसकी बातें सुनकर आदित्य का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो तेज़ कदमों से उसकी ओर आया और गुस्से में विराज को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चुप, एकदम चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुनैना का नाम अपने मुँह से लेने की, और तुझे क्या लगता है इस औरत के यहाँ होने की वजह से तू छूट जाएगा? ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मेरी नज़र में ये औरत सिर्फ मिसेस सहगल और तेरी माँ है और कुछ नहीं। उन दोनों के बीच माहौल गर्म होता देख उस औरत ने समझदारी से कहा, आदित्य बेटा, तुम्हारी मुझसे जो भी नाराज़गी हो बाद में जाहिर करना, चाहो तो मुझे सज़ा भी दे देना, लेकिन विराज को छोड़ दो, उसे अपनी करनी की सज़ा मिल गई है और उसे पछतावा भी है। उस औरत की बात सुनकर आदित्य ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ विराज की ओर देखते हुए कहा, पछतावा कहाँ है, पछतावा कैसा, मुझे तो कहीं भी गिल्ट नज़र नहीं आ रहा है इसकी आंखों में, उल्टा अभी सुना ना आपने अपने बेटे की बात, इसे तो मैं सीधा करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये। इतना बोलते हुए आदित्य आगे आया और विराज के बालों को ऊपर उठाकर उसके दोनों कानों को कसकर दबा दिया। गुस्से भरी नज़रों से विराज की ओर देखने लगा। विराज भी उसी तरह आदित्य को घूर रहा था। उन दोनों को आमने सामने देखते वो औरत फिर से आदित्य की ओर बढ़ती हुई बोली, आदित्य बेटा, नहीं, छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, कहो तो तुम्हारे पैर भी। उस औरत को अपनी नज़दीक आते देख आदित्य पीछे हटते हुए बोला, दूर रहिए मुझसे, ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गार्ड ले जाओ इन्हें यहाँ से। आदित्य की बात पर उसके गार्ड ने उस औरत के हाथ पीछे करके रस्सी से बांध दिए। वहाँ ज़मीन पर पड़े विराज को उठाकर सीधा बिठाया गया और उसकी भी रस्सियाँ दोनों तरफ से कसकर बांधी गईं। सकीना, आदित्य का विला। आदित्य को छोड़कर बाकी सब लोग घर में थे। 24 घंटे बाद सुनैना अपने रूम से निकलकर हॉल में आई। सबके साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। स्वीटी अपने इंस्टीट्यूट से जल्दी वापस आ गई थी और नैना अपनी शूटिंग खत्म करके अपनी बहन के साथ रहने आई थी। उसे पता था कि अकेले में सुनैना ज्यादा घबराती है, खासकर जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। नैना ने चिंता से पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? सोनू सर ज्यादा भारी तो नहीं है ना? वैसे चोट तो भर गई होगी, लेकिन कोई इंटरनल प्रॉब्लम? सुनैना ने सबकी तरफ बारी बारी से देखते हुए कहा, नहीं नहीं, आप लोग परेशान मत होइए। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर मैं ठीक नहीं होती तो यहाँ खुद नहीं आती। वैसे आदि कहाँ है? उसने मुझे बताकर भी नहीं गया। रवि, तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही विवान बोला, तुमने तो डरा ही दिया था हम सबको, और तुम्हें पता है तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद रहती है। विवान की बात सुनकर सुनैना ने नैना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सॉरी दी, शायद मैंने आपको बहुत परेशान किया और इसकी वजह से आपकी मूवी शूटिंग भी डिले हो गई ना। नैना ने सुनैना को गले लगाते हुए कहा, मेरी बहन की जान के सदके ऐसी एक नहीं, हजार मूवी प्रोजेक्ट कुर्बान, बस तुम ठीक हो जाओ, बाकी सब चलता रहेगा। दोनों बहनों के प्यार और इमोशनल बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग थोड़े इमोशनल हो गए। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे से आवाज आई, क्या हुआ? पूरी महफिल यहां इकट्ठी है और सुनैना, तुम इस तरह से क्यों बैठी हुई हो? चलो जाकर रेस्ट। सुनैना ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, कितना रेस्ट करूं है और आखिर कब तक? आदित्य, प्लीज डोंट ट्रीट मी लाइक आई एम वेरी सिक। देखो ये सिर्फ एक झूठ है, मैं काफी ठीक हो गई हूँ, सो प्लीज। इस बार स्वीटी ने जवाब दिया, भाई रहने दो ना, भाभी हमारे साथ अच्छा फील कर रही हैं, और मैंने कहीं पढ़ा है कि कोई भी इंसान जब खुश होता है और अच्छा फील करता है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। सभी स्वीटी की बात से सहमत थे। आदित्य अकेला पड़ गया, उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है सुनैना, तुम यहाँ बैठ सकती हो, लेकिन प्लीज कुछ बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले सोफे का टेक लगाकर बैठो, और तुम्हारी वो नेक पिलो कहाँ गई? उसकी जरूरत होती है। उसके लगातार चीजों का नाम लेने की वजह से सुनैना ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और अपने बगल में खाली जगह पर बैठने को कहा, यहाँ बैठो, इतना क्यों टेंशन लेते हो, मैं ठीक हूँ। इतना बोलते हुए सुनैना ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। आदित्य भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और उसके बगल में बैठ गया। आदित्य के बैठते ही सुनैना ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और बोली, बस यही चाहिए था मुझे, और आप देखना मैं कितनी जल्दी रिकवर हो जाऊंगी। हम दोनों को करीब आते देख विवान खांसने की एक्टिंग करते हुए बोला, गाइज आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। स्वीटी उठकर खड़ी होती हुई बोली, हाँ हाँ, कबाब में हड्डी बनने का शौक किसे है? नैना हल्का सा मुस्कुराई, वहीं सुनैना शर्मा गई। आदित्य ने सबको रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं रुको, कितना ड्रामा करते हो तुम सब। स्वीटी हंसते हुए बोली, अरे लेकिन मैं तो सिर्फ अपने कमरे में जा रही हूँ। नैना मुस्कुराकर आदित्य की ओर देखते हुए बोली, और हाँ आदित्य, वैसे भी तुम आ गए हो ना, तो तुम ख्याल रखो अपनी वाइफ का, मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ, आज मूवी की शूटिंग खत्म हुई और फिर हमें एक और मैटर पर ध्यान देना है, इसलिए मुझे अक्षत से बात करनी है।
सुनैना ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ ठीक है, जो भी मैटर हो, लेकिन कम से कम खाना खाकर तो जा सकती है ना, आप तो कम से कम अपनी सोनू की खुशी के लिए, और वैसे भी हमने कब से साथ खाना नहीं खाया, वैसे अक्षत सर भी यहाँ होते तो। नैना ने जवाब दिया, देखो डिनर के लिए इनवाइट कर रही हो सबको, जबकि खुद कुछ खा नहीं पाओगी, और तुम्हारे अक्षत सर वो आज मेरी शूटिंग अटेंड कर रहे थे, उनकी नहीं, इसलिए वो थोड़े बिजी हैं, लेकिन जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। दोनों बहनों की बात सुनकर आदित्य उठकर खड़ा हो गया। उसने फाइनल फैसला सुनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो सब लोग फ्रेश होकर आओ, और वैसे भी सुनैना की बात कौन टाल सकता है, सब साथ डिनर करते हैं, अगर इससे मेरी सुनैना को खुशी मिलती है तो। आदित्य के ऑर्डर देने पर सभी ने खुश होकर उन दोनों की तरफ देखा और साथ में डिनर करने के लिए राजी हो गए। फिर सब अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। गीता जी ने सभी के लिए डिनर तैयार कर लिया। फिर सब एक साथ बैठकर डिनर करने लगे और मजाकिया बातें करने लगे। सब कुछ देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। क्रमशः